ओम शांति। बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी। कि कैसे हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन करें, लेकिन इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन को एक स्पीड मिले उसके लिए बहुत जरूरी है परमात्मा से शक्ति मिले, और परमात्मा से शक्ति मिले उसके लिए बहुत जरूरी है आत्मा और परमात्मा का प्रॉपर वे में कनेक्शन हो। तो वही राज बताने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। आप गुजरात की धरनी से निकले हैं और 1969 में जब आपकी आयु सिर्फ 14 वर्ष की थी उस समय ही आप ईश्वरीय ज्ञान में आए, और लगभग 2-3 साल के बाद 1972 में जब आपने मैट्रिक एग्जामिनेशन पास की तब से लेकर आज दिन तक आप समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाओं में उपस्थित हैं। और आप स्कूल में भी बहुत मेधावी छात्रा रही हैं, मैट्रिक बोर्ड में भी आप मेरिट लिस्ट में आई थी, और जब आपने ये कदम उठाया कि जीवन समर्पण करना है तो स्कूल के प्रिंसिपल को थोड़ा सा हुआ कि इतना मेधावी छात्र कौन सा मार्ग पकड़ने जा रहा है। लेकिन आज हम कहते हैं अगर उस मेधावी जीवन को देखकर अगर उसी दुनिया में रहते आज जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन तो बहुत छोटी होती नहीं। तो बहुत सही निर्णय लिया कि भगवान ने अगर मेधावी प्रदान की है तो वो कहाँ लगाए, हम भगवान के कार्य में लगाएं। तो आरंभ में आपने सूरत, भरूच, बड़ोड़ा, अहमदाबाद जैसे कई सेवा केंद्रों पर सेवाएं दी, फिर लगातार 14 वर्षों तक आपने भावनगर सब जोन में अपनी सेवाएं दी ऐसे सब जोन इंचार्ज, और उसके बाद करीब पिछले 25 वर्षों से आप हेडक्वार्टर में बेस्ड हैं। कुछ साल आपने ज्ञान सरोवर में रहकर सेवाएं दी और पिछले 6-7 सालों से आप मुख्यतः शांतिवन में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और पूरा ही साल आप अपने आप को बिजी रखते हैं। अगर यहाँ पर आपकी सेवाएं आपको लगे कि इस समय प्रोग्राम नहीं तो आप बाहर के प्रोग्राम में होते हैं, टूर पे रहते हैं हमेशा, तो अपने आप को कभी खाली नहीं रखते हैं। और आप साथ साथ में हमारे पास जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, राज्यों की कुशल प्रशिक्षिका है, और भी कई सारे हमारे पास जो कोर्सेज चलते हैं, जैसे एक समय था जब SML करके बहुत अच्छी से हमारे पास कोर्स चला करता था, लेकिन फिर भी पता चला कि SML में भी आखिर क्या चाहिए, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्यों नहीं जो निज ज्ञान है उस पर ही फोकस किया जाए। तो बहुत अच्छी नारी के सशक्तिकरण आदि की बहुत अच्छे गुह्य अनुभव सुनाते हैं। तो आज हमारे सामने आर्ट एंड साइंस ऑफ राजयोग रखने जा रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हाँ, आपके कोलाबा में भी सेवा करके गए हैं। ये तो मिस हो गया पॉइंट। हाँ, मैंने सुना था इनके पहले, अभी जब याद दिला रहे कि कोलाबा इनके लिए इतना भाग्यशाली रहा कि कोलाबा के बाद सीधा उनको हेडक्वार्टर मिल गया।
ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सब ने सुना, परमात्मा से मिलन मनाना हम सभी चाहते हैं ना। सदियों से प्रभु मिलन के लिए मनुष्य आत्माएं प्रयत्नशील रही है, क्योंकि इतना तो हम सब जानते हैं और मानते हैं कि परमात्मा की याद से ही सदा काल के सुख और शांति प्राप्त हो सकते हैं। प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव भी हैं हरेक को कि कोई भी व्यक्ति की याद या वस्तु की याद सदा काल का सुख नहीं दे सकती। मान लो कोई व्यक्ति है जिससे मुझे बहुत प्यार है, उससे मुझे बहुत सुख मिलता है, मदद मिलती है, उसकी याद मुझे आनंद देता है, साथ का अनुभव कराता है, पर वो व्यक्ति बदल जाए, कहीं दूर चली जाए, उनसे मेरे संबंध टूट जाए या वो खत्म हो जाए, व्यक्ति ही खत्म हो जाए, अब उसकी याद मुझे कैसे लगेगी? दर्द महसूस कराने। ऐसे ही कोई चीज है जिससे मुझे बहुत प्यार है, आकर्षण है, वो चीज बहुत सुंदर है, प्रिय है, पर वो टूट जाए, फूट जाए, गुम हो जाए, कोई चुरा ले, तो उसकी ही याद मुझे दुख देने वाली महसूस होती। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और वस्तु है ना, संसार में क्या है, व्यक्ति हैं और वस्तुएं हैं। व्यक्ति माना चैतन्य शक्ति और वस्तुएं माना प्रकृति। संसार का खेल प्रकृति और पुरुष का बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति और वस्तु दोनों परिवर्तनशील हैं, आखिरकार नाशवंत है, वो सदा काल के सुख शांति आनंद नहीं दे सकते। इसलिए जीवन में अनुभव भी है कि जब चारों ओर से धोखा मिलता है, दुख मिलता है, कोई साथ नहीं देते हैं, मुश्किल परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आखिर इंसान किसकी शरण में जाता है? परमात्मा की ही शरण में जाते हैं, उसको याद करते हैं और कहते हैं कि अब तो आप ही मेरे आधार है। अब चारों ओर से दुखी हो जाएं, धोखा खाएं, निराश हो जाएं, फिर ईश्वर को आधार बनाएं, इससे तो क्यों नहीं, हम पहले से ही परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना लें, ताकि दुखी होने की बात ही ना आए, निराश होने की क्षण ही ना आए। तो राजयोग वो विधि है, वो कला है, जिससे हम ईश्वर को अपना आधार अपना साथी सारथी बना सकते। इसके लिए तीन बातें जरूरी। पहले तो परिचय चाहिए, बिना जाने पहचाने कैसे आधार बनाएंगे। दुनिया में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, क्या सबकी याद हमें आती है? हमें किसकी याद आती है? जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। आज परिचय हुआ हम सब, हम याद करना चाहें कर सकते। याद का प्रथम आधार परिचय ज्ञान है। और वो परिचय आप सबने प्राप्त कर लिया है, लेसन चले हैं ना यहां भी। अब आप जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने अविनाशी पिता परमात्मा को जानते जानते हैं ना, परिचय मिला। मानते हैं या जानते हैं? मानते तो हर कोई है भक्ति में भगवान को। हम यथार्थ रूप से अब जान पहचान कर मानते, बिना सही परिचय मानना श्रद्धा है। यथार्थ रूप से जान पहचान कर मानना ज्ञान है, निश्चय। अब हमें स्पष्ट है कि मैं खुद कौन हूं। खुद को सिर्फ शरीर समझते रहे तो शरीर के मित्र संबंधी दैहिक दुनियावी कारोबार की बातें ही याद आती रही। अब हम सत्य समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, पर शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। और हम आत्माओं के अविनाशी पिता परमात्मा है। अब उसका यथार्थ परिचय है, हम उस परिचय से भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि क्लैरिटी है बुद्धि में। पर सिर्फ परिचय तक सीमित रहते हैं, फिर बार बार मिलना नहीं होता, कोई संबंध संपर्क नहीं होता, तो धीरे धीरे फिर भूल जाता है। इसलिए याद का दूसरा आधार संबंध जोड़ना, संबंध जोड़ना। हमें अक्सर कौन याद आते हैं? जिससे हमारे रिलेशन है, कनेक्शन है, वही याद आते हैं। परमात्मा की याद हमें नेचुरल आती रहे, उसकी विधि है संबंध जोड़ो। सिर्फ परमात्मा को मानो नहीं, यथार्थ रूप से जानो। जान तो लिया, अब विवेक से पहचानो। साइलेंस में बैठकर विवेक से पहचानो कि जो परिचय मिला है वो क्या है, कैसे सत्य है। अपने लॉजिक से पहचानो। सिर्फ पहचानो नहीं, उनसे संबंध जोड़ो। तो याद नेचुरल आए। अच्छा, जीवन में संबंध भी अनेकानेक होते हैं। संबंधों का तो एक संसार होता है। लोग कहते हैं ना कि भी मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है, मेरा तो बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, पर इन अनेकानेक मित्र संबंधियों में भी हमें बहुत जिगरी किसकी याद आती। जिससे दिल का सच्चा प्यार है, वो प्यार माँ बाप से है तो माँ बाप याद आएंगे, पत्नी से है तो पत्नी याद आएगी, मित्रों से है तो मित्र याद आए, बच्चों से है तो बच्चे याद आए। जिससे दिल का जिगरी सच्चा प्यार है वो बहुत याद आते। हमें उनको याद करना नहीं पड़ता है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमें नेचुरल याद आती है। बल्कि जितना जिगरी सच्चा प्यार हम कहते हैं कि मुझे सिर्फ उनकी याद आती नहीं है, मुझे तो क्या कहते हैं, मुझे तो उनकी याद सताती है ना। मैं भूलना चाहूं तो भी नहीं भूल सकती। तो याद का तीसरा आधार प्यार है। प्यार, भगवान से प्यार करना। जितना सच्चा जिगरी प्यार, ऑटोमेटिक उसके याद में प्यार में हम मग्न हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। कोई हठ दमन, कोई क्रियाएं नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगर हम कहते हैं कि परमात्मा की याद में मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, ऐसा रिजल्ट भटकता है मन, क्या रिजल्ट आपका अपना रिजल्ट क्या है? हाँ, मन परमात्मा की याद में एकाग्र होता है या मन भटकता है? मिक्स है ना। तो अगर हम कहते हैं कि मन परमात्मा की याद में एकाग्र नहीं होता है, भटकता है, मीन्स हमारा परमात्मा से सच्चा प्यार नहीं है, नहीं है। हम परमात्मा को याद करते हैं पर कोई स्वार्थ से याद करते, मतलब से याद करते। हमें परमात्मा से कुछ चाहिए इसलिए याद करते हैं। अगर उनसे वो प्राप्ति ना होती हो तो शायद हम याद भी न करें, है ना। स्वार्थ से याद करते, मतलब से याद करते, कोई भय से भगवान को याद करते, मुझे कुछ हो न जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, बीमार न हो जाऊं, भय है ना, भय से याद करते, मेरे गड़बड़ घोटाले खुल न जाए, मेरे पाप फूट न जाए, इसलिए याद करते। पाप करने का गम नहीं है पर किया पाप फूट न जाए इसलिए याद करते। अब आप देखो ये कैसा, इसको प्यार कहें, भय से याद करते। वो सच्चा परिचय, संबंध और प्यार न रहने के कारण हम बाह्य मेहनत करते, मन लगाने के लिए कितनी मेहनत करते। तो देखिए अब हम समझे हैं कि इसमें कोई मेहनत की बातें नहीं, ना कोई क्रियाओं की आवश्यकता है, ना कोई साधनों की आवश्यकता। एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क, प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। यहां अगर घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो, मैं बोलूं ही नहीं तो मेरे और आपके बीच कांटेक्ट स्थापित नहीं होता। इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम टेलीफोन के माध्यम से आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क संबंध में रहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल से मिलते रहते, मोबाइल से बातचीत करते हैं, संपर्क में रहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कॉन्टेक्ट होता। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं होता, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन मन और बुद्धि से ही हो सकता है। इसलिए गीता में भी क्या कहा है, मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मैं बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगा। अब हम हरेक अपने आप को देखें कि हमने अपने मन बुद्धि तो कहीं और लगा दिए हैं। धन में, साधन में, व्यसन में, व्यक्ति में, बातों में, घटनाओं में, हमने तो अपना मन कहीं और अटैच कर दिया है। और परमात्मा की याद के लिए फिर हम बाह्य मेहनत करते रहते हैं। परमात्मा से मनोमिलन हो सकता है, फिजिकल मीटिंग उनके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो फिजिकल है ही नहीं। वो परम चैतन्य शक्ति है और हम भी कौन है? चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो कोई फिजिकल मीटिंग की बात नहीं है, ये परमात्मा से मनोमिलन, स्नेह मिलन की बात। इसलिए राजयोग में सबसे पहली बात, इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं, इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। और लोग योग के नाम पर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आसन, प्राणायाम, व्यायाम, देह दमन की हठ क्रियाएं कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं। परमात्मा से मिलन बनाने में कोई शारीरिक क्रियाओं की बात नहीं। गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जिसको योग शास्त्र कहते हैं, अध्ययन की होगी ना, उसके हर अध्याय के नीचे लिखा है कि गीता योग शास्त्र है। पर पूरी गीता का अध्ययन आप करिए, कहीं भी योग के नाम पर आसन प्राणायाम की बात ही नहीं। और हम योग माना आसन प्राणायाम ही कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि योग जो भारत की ही विद्या है, हम भारतवासियों को स्पष्ट है यथार्थ योग किसे कहते। हमारा ये तो नैतिक फर्ज है कि हम खुद योग को यथार्थ रूप से जाने समझे। हम प्रतिदिन अभ्यास करें। हमारे पास योग के इतने अच्छे अनुभव हों कि देश या विदेश की कोई भी व्यक्ति हम से पूछे, हम योग के बारे में सही मार्गदर्शन दे सके। यथार्थ योग केवल परमात्मा सिखा सकते, क्योंकि योग का आधार आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान है। और आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान केवल परमात्मा ही दे सकता है। यथार्थ योग तभी संभव है जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से जो योग सिखाया है वो आप सीखने जा रहे हैं। भी राजयोग में कोई आसन प्राणायाम की क्रियाएं नहीं। कई आसन प्राणायाम की क्रियाएं इतनी कठिन है कि माताएं बहनें बूढ़े बीमार कर ही नहीं सकते हैं। परमात्मा को याद करने की विधि तो सहज होनी चाहिए ना, जो हर कोई कर सके। यहां आप बिगर आसन आराम से कुर्सी सोफा पर बैठे, फिर भी एक घंटे में आप बताइए कितनी बार पांव ऊपर नीचे होते, कितनी बार हम हिलते डुलते हैं। हम एक सहज कंफर्टेबल पोजीशन में भी नहीं बैठ पाते हैं। अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो कोलाबा का ग्रुप फिर आएगा। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। हमारे शरीर ऐसे कमजोर रोगी बन गए हैं, किसी को घुटनों में दर्द है, पांव दुखते हैं, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। हम सुखासन में भी नहीं बैठ पाते। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि अपनी सहज स्थिति में बैठिए, आराम से कुर्सी पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए, सुख से बैठिए। फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर बैठे। जब आप योग अभ्यास करने बैठे, मन से अटेंटिव होकर बैठे कि ये एक घंटा दो घंटा आधा घंटा मैं परमात्मा मिलन के लिए बैठे, शिव बाबा की याद के लिए बैठे। इस लक्ष्य से बैठना, जब भी आप योग अभ्यास करें लक्ष्य पूर्वक करें कि ये आधा घंटा और बातें मुझे नहीं सोचनी है। जीवन की अन्य अनेकानेक बातें, घर गृहस्थी की, नौकरी धंधे की, समाज संसार की, अन्य अनेकानेक बातें सोचने के लिए बाकी के 22 घंटे हैं। ये नियम बना दें प्रतिदिन सुबह एक घंटा अमृत वेला, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है, और संध्या के समय एक घंटा, ये दो घंटे परमात्मा मिलन के लिए हैं, उनकी स्मृति के लिए हैं। उस समय मुझे और बातें नहीं सोचनी, इस अटेंशन से बैठ। अब मान लो आसन सीखते हैं, कोई पद्मासन लगाकर, अर्ध पद्मासन लगाकर घंटा स्थिर बैठ भी सकते होंगे आप में से कोई, पर आप सोचिए शरीर से हम स्थिर बैठ गए, मन बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हुए, केवल शरीर से, बाह्य शरीर से स्थिर बैठ गए, तो क्या फायदा है। हमें मन मग्न करना है, हमें बुद्धि परमात्मा में एकाग्र करनी है। इसलिए राजयोग में हम कहते हैं कि मन आसन्न करना है, मन परमात्मा में स्थित करना है, न कि बाह्य शरीर से आसन लगाकर बैठ जाना। तो इसमें कोई शारीरिक क्रिया नहीं। दूसरी बात, लोग सोचते हैं योग में हम क्या करें, भक्ति में तो भगवान को याद करने, उसमें मन बुद्धि लगाने के लिए कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र रटते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं, तो राजयोग में क्या करना है? राजयोग में न माला फेरनी है, न मंत्र रटना है, ना ही मुख से कोई आवाज करते। हम अपने मन बुद्धि सहज परमात्मा की याद में नहीं लगा सके तो हमें विभिन्न प्रयास सिखाए गए। समय प्रति समय जो धर्मात्माएं महात्माएं संत गुरु हुए, उन्होंने हमें विभिन्न प्रयास बताए कि भाई चलो इस प्रकार करके देखिए, माला फेर के देखिए, मंत्र रट के देखिए, मुख से आवाज करके भजन गा के प्रयास करिए। ये विभिन्न प्रयास सजेस्ट किए गए, पर रिजल्ट क्या है? रिजल्ट भी तो हम ऑब्जर्व करें ना, कि हम माला फेरते रहे हैं पर रिजल्ट क्या है? मन भी फिरता रहता है। हम मंत्र रटते हैं और मन भी भटकता रहता है। इसलिए भक्ति में भी जो ज्ञानी भक्त हुए हैं उन्होंने क्या सजेस्ट किया? एग्जाम्पल के रूप में कबीर जी ने क्या कहा है कि माला फेरत युग हुआ पर गया न मन का मैल रे। इसलिए दूसरी दो पंक्तियों में उन्होंने क्या सजेस्ट किया है? हाथ के मन के छोड़ दे मन का फेर। तो ये हाथ से माला फेरने की बात नहीं है, मनोस्थिति बदलने की बात है, मनोस्थिति बदलने की बात। अब हम अपने आप को अब तक शरीर समझते रहे तो मन बॉडी कॉन्शियस हो गया है, हम बहिर्मुखी बन गए, हम संसाराभिमुख हो गए हैं। अक्सर कौन से विचार हमें आते रहते, कौन से विचार आते रहते? मित्र संबंधी, नौकरी धंधा, समाज संसार, वही बातें सोचते रहते हैं ना। मीन्स हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, संसाराभिमुख हो गए हैं। तो हमें अपनी मेंटल पोजीशनिंग चेंज करना है, मनोस्थिति बदलनी है, मन के नहीं बदल, मन अंतर्मुखी बनाना, मन परमात्मा भीमुख करना। इसलिए प्रथम लेसन में प्रथम अभ्यास आत्मचिंतन का आपको सिखाया गया। पहला लेसन कौन सा चला? आत्मा का परिचय मिला ना, आत्मचिंतन सिखाया गया ताकि मन अंतर्मुखी बने, मन परमात्मा विमुख करना है। इसलिए न माला फेरनी है न मंत्र रटना। अक्सर लोग कोई न कोई मंत्र लेते हैं और रिपीट करते हैं, रटते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग मंत्र बोलते हैं, जपते हैं, मंत्र का अर्थ भी नहीं समझते। कई धार्मिक अनुष्ठानों में, प्रसंगों में आप देखिए, ब्राह्मण आते हैं, पुजारी आते हैं, पंडित आते हैं, श्लोक बोलते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, कितने लोग समझते हैं? कितने लोग समझते हैं अर्थ? जब हम अर्थ नहीं समझते हैं, हम अभ्यास क्या करेंगे, हम अनुभव क्या करेंगे? इसलिए शिव परमात्मा हमें सिखाते हैं कि मंत्र रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को समझकर आचरण में लाना है। सिंपल बात, शब्द मंत्र रिपीट नहीं करना है, उसके अर्थ को समझकर आचरण में लाना है, जीवन में धारण करना। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र नहीं। ऐसा नहीं है कोई ओम शांति ओम शांति ओम शांति रटते रहना है, बोलते रहना। कोई ओम शांति बोलने की प्रथा की बात नहीं है। ओम शांति लिख लिख करके नोटबुक भरने की बात नहीं है। हमें ओम शांति बनना है, हमें शांत आत्मा बनना है, हमें अपनी आत्मा स्थिति शांत बनानी। सिर्फ शब्द रिपीट नहीं करने, इसलिए इसमें कोई मंत्र नहीं, ना ही मुख से कोई आवाज करना है। हम भक्ति में जोर जोर से भजन गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं, आरती गाते हैं, आवाज करते। श्रावण मास में, चातुर्मास में, हर वार त्योहारों में लोग माइक लगाकर जोर जोर से रात दिन भजन गाते हैं, कितना आवाज करते हैं। और सत्यता क्या है? सत्यता क्या है कि मुख का आवाज परमात्मा को नहीं पहुंचता है। परमात्मा तो इस आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में रहते, उनको मुख का आवाज नहीं पहुंचता है। परमात्मा को कौन सा आवाज पहुंचता है? अंतर मन का आवाज पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार परमात्मा को पहुंचता, मुख का आवाज उनको नहीं पहुंचता। ये आवाज की दुनिया है, ये टॉकी वर्ल्ड है, और वो तो साइलेंस वर्ल्ड है। शांति धाम में रहते हैं ना शिव बाबा, वहां मुख का आवाज नहीं पहुंचता। इसलिए राजयोग में हम क्या करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं और मन ही मन प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं। अब लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये चुपचाप बैठते हैं, एक दो को देखते रहते हैं, पता नहीं कौन सा योग करते हैं। इसमें कोई आवाज नहीं है, तो इसमें कोई औपचारिक आर्टिफिशियल बाह्य क्रियाएं नहीं। तीसरी बात, लोग पूछते हैं योग कहाँ लगाना है, किससे लगाना है। भक्ति में तो हम सामने मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं, चित्र रखते हैं, दीवा जलाते हैं। राजयोग में हमें क्या करना है, हम योग कहाँ लगाएं। अब मैं आप सबसे ही पूछना चाहूंगी, अब आप भी सिर्फ भक्त आत्मा नहीं है, आज आप भी ज्ञानी तो आत्मा बन गए हो गया ना ज्ञान आपको, हम कौन है, परमात्मा कौन है। अब आप खुद विवेक से बताइए हमें योग कहाँ लगाना, हमें योग डायरेक्ट परमात्मा से लगाना है, हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य तो हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से या मूर्ति से योग नहीं लगाना। समझ गए ना बात को, हमें डायरेक्ट परमात्मा से योग लगाना है, न कि परमात्मा के फोटो से योग। ये तो भक्ति में हम परमात्मा को नहीं जानते थे, तो हरेक ने अपनी अपनी श्रद्धा भावना अनुसार अपने अपने इष्ट के चित्र मूर्ति फोटो रख दी, पर रिजल्ट क्या है, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और फिर भी मन में दूसरी मूर्तें घूमती रहती। आखिर कब तक हम ये आधार लेंगे। अब हमें सत्य परिचय मिला है, हम एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने स्नेहियों को प्रेमियों को याद करते हैं, क्या उनका फोटो हो तो याद आवे ऐसे हैं? नहीं, हम कहते हैं ना मुझे उनके बाह्य फोटो की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे मन में ही छपे हुए हैं। जब सत्य परिचय मिल जाता है और लगन लग जाती है, फिर बाह्य फोटो की भी जरूरत नहीं रहती। हमें डायरेक्ट परमात्मा से योग लगाना। अच्छा, परमात्मा तो शरीरधारी है ही नहीं, इन आंखों से देखने की बात ही नहीं है ना। परमात्मा तो है ही दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, मन की आंख से देखना है, ज्ञान नेत्र से पहचानना है। अभी आप इस हॉल में बैठे हैं, अभी आप यहाँ सूर्य चंद्र नहीं देख रहे हैं। सूर्य चंद्र को नहीं देख रहे हैं, पर जैसे ही सूर्य चंद्र शब्द मैंने बोला, आप सबने क्या किया, क्या किया, मन की आंख से देखा ना, क्योंकि आपको ज्ञान है सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, कहाँ है, तो मन की आंख से आपने देखा ना। परमात्मा इन आंखों से देखने की चीज ही नहीं है, मन की आंख से देखना है और बुद्धि से याद करना है। तो हम शरीर से यहाँ बैठते हैं, गीत में सुना ना योग की विधि क्या है, यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ मन होगा, ये विधि है बस। हम शरीर से यहाँ बैठते हैं, मन और बुद्धि से परम धाम में जाते हैं, परम ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखते हैं और याद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। उस याद और प्यार में एकाग्र होना, उसे योग कहते, उसे योग कहते। तो राजयोग कोई मुश्किल नहीं है, हर कोई योगी बन सकते। राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र योगी बन सकते हैं, पर जब भी हम भाई बहनों को शिव बाबा का ये दिव्य संदेश देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि हम योगी कैसे बन सकते हैं, हम तो गृहस्थी हैं, संसारी हैं, बछड़े वाल हैं, नौकरी धंधा है, हम योगी कैसे बन सकते। योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, अक्सर लोग यही सोचते हैं ना कि योगी बनना हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े, दुनिया से दूर कहीं शांत एकांत में जाके बैठे तो योग लग सकता है परमात्मा से। हम तो छोड़ नहीं सकते हैं, हम कैसे योगी बन सकते हैं। और अब तक अधिकतर जो योगी हुए, तपस्वी हुए, घर बार छोड़ के हुए, निवृत्ति मार्ग के हुए, तो लोग सोचते हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम योगी नहीं बन सकते। पर राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि दुनिया नहीं छोड़नी, जिम्मेवारियां, संबंध, प्रवृत्ति, परिवार नहीं छोड़ना है, देहभान छोड़ना है, बॉडी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, सोल कॉन्शियस बनना है। दुनिया नहीं छोड़नी है, देहभान मिटाना है। इसलिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने से हम योगी नहीं बन जाते, कोई सफेद वस्त्र पहन लेने से हम योगी नहीं बन जाते। योग के लिए आंतरिक परिवर्तन करना है, मनोस्थिति बदलनी है, आंतरिक वृत्ति स्मृति बदलनी। ये सफेद ड्रेस हमारा यूनिफॉर्म है, हर ऑर्गेनाइजेशन का विद्यालय का यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता? हाँ, हमारा ये यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम सेवा में हैं इसलिए फुल टाइम पहनते, पर सफेद वस्त्र पहन लेने से कोई योगी नहीं बनता। बेशक योगी को सफेद वस्त्र पसंद आते हैं, क्योंकि सफेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता और शांति का प्रतीक है। तो ये सिंपली यूनिफॉर्म है। योगी बनने के लिए अंतर मन की सफाई करनी है, शुद्धि रखनी। तो राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है, इसमें सिर्फ पूजन नमन वंदन गायन दर्शन कीर्तन करके खुश हो जाने की बात नहीं। भक्ति में हम नियम से पूजा पाठ धूप दीप भजन कीर्तन करके खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक, पर हमारे जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजयोग का ध्येय है पुजारी से पूज्य बनना, मनुष्य से देवता बनना, पति से पावन बनना, ये राजयोग का लक्ष्य। इसलिए देखिए बाह्य दृष्टि से कोई क्रिया नहीं है, कोई साधन नहीं है। हम योग में परमात्मा को पुकारते नहीं, कई पुकारते हैं, माइक लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हैं, अल्लाह अकबर, ओ गॉड, ओ हे भगवान। पुकारना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। बताया ना, मुख का आवाज उनको नहीं पहुंचता है। हम परमात्मा को याद करते हैं, हम उनसे कुछ मांगते भी नहीं हैं। भक्ति में हम कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर वास्तव में क्या करते हैं? हम उनसे मांगते रहते हैं, हे भगवान विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, मांगते रहते हैं। राजयोग में हम मांगते नहीं हैं। क्यों नहीं मांगना है? क्यों नहीं मांगना? हम उनके बच्चे हैं, और बच्चा तो वारिस होता है, तो हम तो वारिस हैं। हमारा अधिकार है परमात्मा से प्राप्त करना, हमें मांगना नहीं है, लायक बच्चा बनना। योग्य बच्चे को माँ बाप अपने आप सब कुछ देते है कि नहीं? ऐसा सपूत के लिए माँ बाप सब कुछ करते हैं अपने आप, खुद नहीं खाते हैं, नहीं पहनते हैं, बच्चे के लिए खर्च करते। तो हमें मांगना नहीं है, योग्य ईश्वरीय संतान बनना। परमात्मा को हम कहते हैं ना स्वमेव माता च पिता स्वमेव, तो हम उनके बच्चे हैं ना। पर क्या हम अपने आप को ईश्वरीय संतान कहलाने योग्य हैं? योग्य बनना, योग्य बनना ही योगी बनना। अपने आप उनकी याद से ही प्राप्ति, मेहनत की बात ही नहीं। और तीसरी बात, कई भक्ति में परमात्मा को रिक्वेस्ट करते, विनती करते है ना। हम बड़े दीनहीन लाचार मजबूर बनकर ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना, करते हैं ना। राजयोग में हम विनती नहीं करते। क्यों नहीं विनती करना है? हमें परमात्मा को विनती रिक्वेस्ट क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो खुद ही दाता है, वो तो ऑलरेडी दे रहा है ना, वो तो हमें दे रहा है। जो स्वयं दे ही रहा है उनको बार बार कहना देना देना, ये तो इंसल्ट करना है। भाई ऑलरेडी मैं दे ही रहा हूं ना। परमात्मा दाता है, निरंतर दे ही रहा है। हमें स्वयं में देखने की जरूरत है कि वो दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। खुद में देखिए ना। भई आपके शहर में पावर हाउस है, पर आपके घर में बिजली तो तब आएगी ना जब कनेक्शन करेंगे। हमारा परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं रहा है, रिलेशन नहीं रहा। इसलिए जैसे बाहर जोर से बारिश आ रही हो, पर आपने अपना लोटा उल्टा रखा है तो भरेगा। समझ गए ना, प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? हा? लोटा ही उल्टा है, बुद्धि ही विपरीत है। हमारी परमात्मा से प्रीत नहीं है, इसलिए प्राप्ति नहीं है, अनुभूति नहीं है। तो पिता शिव बाबा को यथार्थ रूप से जान पहचान कर उनसे जीवन के सर्व संबंध जोड़ना, जिगरी प्यार करना, उस याद और प्यार में एकाग्र होना, फॉलो हो जाना, उससे योग कहते हैं। ये है राजयोग की विधि। कोई मुश्किल बात नहीं है, सत्य और सहज विधि। और लास्ट बात, इस योग अभ्यास में आंख बंद करने की भी जरूरत। अक्सर परमात्मा को याद करने बैठते हैं, हम क्या करते हैं, आंख बंद करके सिर झुका करके बैठ जाते हैं। करते हैं ना भक्ति में। हमने देखा स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना कराते हैं, टीचर्स जबरदस्ती बच्चों की आंख बंद करवाते हैं। क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। हम ये मानते हैं कि आंखें खुली रहेंगी, सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए हम आंख बंद करके बैठते। पर क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है और भटकता है? क्योंकि देखो, आंखें खुली हैं तो इस हॉल की चार दीवार में जो है वो मुझे दिखाई देता है, पर आंख बंद करने के बाद तो सारी दुनिया दिखाई देती, जिंदे मरे सब दिखाई देते। फिजिकल आई की लिमिट है, मन की आंख की कोई लिमिट है? इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि आंखें नेचुरल खुली रहने दीजिए, मन और बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस करें, बुद्धि का अटेंशन परमात्मा की ओर, मन आंखें नेचुरल खुली रहने दीजिए। हमें मन और बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस करने की जरूरत है, इसलिए ये नेचुरल योग है, इजी योग है, सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि इसका आदि शिक्षक परमात्मा है। इस योग अभ्यास से हम अपने मन बुद्धि को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना सकते हैं जो हम कर्मेंद्रियों का राजा बन सकते, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। तो आज का अभ्यास कैसे करेंगे? विधि पूर्वक करेंगे, विधि पूर्वक योग अभ्यास हम करेंगे। अब तक हरेक अपनी अपनी भावना मान्यता अनुसार परमात्मा को याद करते रहे, अब हम यथार्थ रूप से जान पहचान कर निश्चयात्मक बुद्धि बनकर उससे याद करें। तो सभी व्यवस्थित बैठ जाएं। तीन मिनट शिव बाबा की याद में बैठेंगे, अपनी सहज स्थिति में बैठिए, फिजिकली रिलैक्स, मेंटली अटेंटिव होकर बैठेंगे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर जाएंगे, परम ज्योति बिंदु शिव पिता को हम देख रहे हैं। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता, आपके सत्य ज्ञान को पाकर मेरा जीवन आज धन्य बन गया है। मुझे जीवन का सही ठिकाना मिल गया है। अब मेरा यही लक्ष्य है मेरे प्यारे शिव बाबा, जो सत्य ज्ञान आप हमें देते हैं, जिन गुणों के आप सागर हैं,
जिन शक्तियों के आप अखुद भंडार हैं, प्यारे बाबा, वो आपका संपूर्ण सत्य ज्ञान, सर्वगुण, आपकी सभी रूहानी शक्तियां मुझे भी अपने जीवन में धारण करनी है। आप मेरे पिता, शांति के सागर हैं, तो मैं आत्मा आपकी संतान, शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांति, आप शांति दाता है। मैं आत्मा भी अब शांति दूत बन सर्वत्र शांति फैलाऊंगी। मेरी सदा पावन सर्वशक्तिमान शिव बाबा, आपकी याद से मैं आत्मा भी शुद्ध पवित्र बनती जा रही हूं। मैं आपसे योग लगाती हूं, मैं आपसे जुड़ती हूं, आपके साथ का अनुभव करती हूं। मैं आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती हूं। मुझे यही निश्चय और नशा है, खुशी है कि मैं आत्मा आपकी संतान, ईश्वरीय संतान हूं। मैं शुद्ध हूं, सत्य हूं, मैं दिव्य ज्योति बिंदु हूं, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। ओम शांति। Thank you.